نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم سورۃ النساء شروع کریں گے. سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ احد سے احزاب تک کے درمیان کا ہے، اور اس زمانے کے جو حالات تھے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ یہ سورت دیکھیں گے. یہ سورت سبع طوال میں سے ہے، یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، آراف اور الانفال، یہ وہ سورتیں ہیں جو سبع طوال کہلاتی ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک سورت ہے. اس سورت کا نام النساء ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف عورتوں کی کہانیاں بتائی جائیں گی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ عورتوں کے بہت سارے مسائل اس میں ڈسکس ہوئے، کمزوروں کی بات ہوئی، یتیموں کی بات بہت ہوئی، مگر یہ نہیں کہہ سکتے اس کا موضوع عورت ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سورتوں کی موضوع نہیں ہے. جیسے سورت البقرہ ہے، اب یہ مطلب نہیں کہ سورت البقرہ میں سارا گائے کا ہی ذکر آتا جا رہا ہے، بلکہ سمجھ لیں یہ ٹائٹل دے دیا گیا کسی سورت کو. اسی طرح یہاں پہ یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کا ایک یعنی ایک عنوان اس کا دے دیا گیا، مگر ادروائز اس میں اور بھی ایشوز ہیں جن پہ بات کی گئی ہے. اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، اور ازواج کتنی رکھ سکتا ہے ایک آدمی، اسی طرح وراثت کے احکامات، معاشرے سے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے لیے ابتدائی احکامات دیے گئے ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے، اعمال صالح اور توبہ کی تلقین کی گئی ہے، مسلمانوں کا مال نہ حق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، اور آپ بہت زیادہ دیکھیں گے فیملی لائف پہ بہت بات ہوئی ہے. یعنی فیملی لائف سے مراد یہ ہے کہ جو آئلی زندگی، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوئے، نکاح، طلاق کے اور اس طرح کی باتیں. اور یہ جو فیملی یونٹ ہے، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ جس وقت سٹرونگ ہوتا ہے تو ایک گھرانہ سٹرونگ ہوتا ہے، ایک خاندان سٹرونگ ہوتا ہے، اور خاندانوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو معاشرہ مضبوط تب ہوتا ہے جب ایک خاندان مضبوط ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے خاندانی زندگی پہ بہت بات ہے، اور بہت زیادہ آپ کو منافقین کے بارے میں بھی اس میں آیات ملیں گی. ٹورڈز دا اینڈ ہم دیکھیں گے، ابھی تو نہیں، لیکن منافقین کا ایسے پول کھولا گیا کہ شاید ہی اور قرآن پاک میں کسی اور جگہ اس طرح سے ان کی باتیں بتائی گئی ہوں، کہ جو ان کی سزا بھی ہے اور جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں. اس سورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت میری رخصتی کے بعد نازل ہوئی، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی جب یہ سورت نازل ہوئی. تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی تو 1 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور اس وقت مدینہ کے جو حالات تھے، آپ کو پتہ ہے جو جنگ احد بھی ہوئی، تو اس میں بہت سارے گھرانوں میں شہادتیں ہوئی تھیں، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو 70 سے زیادہ تو عورتیں بیوہ ضرور ہی ہوئیں گی، کیونکہ وہاں پر ایک عورت سے نہیں شادی کی جاتی تھی، ہر ایک کی ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اسی طرح کئی کئی بچے یتیم ہو گئے تھے. کیسے وراثت کے مسائل حل ہوں گے، کیسے اور خاندانی معاملات طے ہوں گے، وہ آپ اس صورت میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آج ہم اس صورت کا پہلا حصہ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 1 سے 11 تک کریں گے. دیکھتے ہیں اس سورہ کو. अच्छा, ये हम किसका कलाम पढ़ रहे हैं? अल्लाह का, ठीक है। ये बात कलाम पढ़ने के दौरान भी याद रहनी चाहिए। और अल्लाह कौन है? मेरी और आपकी अकल क्या है? कुछ भी नहीं। वो जो अलीम है, हकीम है, खबीर है, उसकी दी हुई कलाम को, उसकी बताए हुए अहकामात को हम जानने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात जहन में रखते हुए आज की आयात को पढ़िएगा, अपनी अकल को सामने ना रखिएगा, ठीक है? कि मैं तो ये समझती हूँ, और मैं तो, मेरा तो ये ख्याल है, और ये कैसे फिर हो गया, वो क्यों ऐसे हो गया। ये जहाँ पे अहकामात की बात आती है और कोई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, तो फिर हम उन पे नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं। अल्लाह के अहकामात को समझना व अताना कह के कबूल करना होता है। सहाबा कराम को कोई बात नहीं समझ आती थी तो आपसे पूछते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि पिछली कौमों की तरह ना हो जाना, तुम ये को समझना व अताना, आमन्ना व सद्दकना, ठीक है? तो आपने भी ऐसे ही कहना है। कुराने पाक के तालिबे इल्म के अंदर कम अज कम इतना बड़ा ये हौसला होना चाहिए कि कोई चीज़ उसके दिल को नहीं भी भा रही, तो तब भी चूंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात हक है, ठीक है, और उसकी बात पूरी पूरी हिकमत पे मबनी है, और उसी में खैर है। ये नहीं कि मेरी और आपकी अकलें कोई खैर की बात को ज्यादा सोच सकती हैं और ज्यादा समझ सकती हैं। और ये भी याद रखिए, मर्द हों या औरतें, सब अल्लाह ही की मखलूक है। कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी एक के साथ ज्यादती करे, जैसे अल्लाह ने उसको बनाया वैसे ही उसको भी बनाया। तो अल्लाह, दोनों ही अल्लाह की मखलूक है। तो ये भी कभी ना समझिएगा कि अल्लाह ताला ने पता नहीं किसी एक फरीक के साथ ज्यादती कर दी। और औरतों को तो बहुत ही ज्यादा ये गिला शिकवा रहता है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, ठीक है? तो देखते हैं आज की आयत को, हमारा आज का सबक आयत नंबर 1 से 11 तक है। पहली आयत जो है, ये वो आयत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए निकाह हमें तिलावत फरमाया करते थे। आपने सूरह आले इमरान में भी एक आयत पढ़ी थी ना, एक आप सूरह अज़ाब में भी पढ़ेंगे, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबाए निकाह में पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह, ये जो आपने सूरह आले इमरान में पढ़ी थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आयत भी बड़ी अहम है, और वहाँ पे भी तकवा के ऊपर बात है, और यहाँ पे भी तकवा के साथ ही बात है। और ये आयत ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा निकाह में पढ़ा करते थे, और खुतबों में भी ये आयत तिलावत किया करते थे, यानी जैसे जुमे का खुतबा, ईद का खुतबा। तो इससे आपको थोड़ी सी अहमियत पता चलेगी कि आयत नंबर 1 की अहमियत कितनी है, ठीक है? तो इसकी अहमियत को जान के आप ये फिर आयत पढ़ें, सही है ना? ताकि आपको पता चले कितनी इंपॉर्टेंट थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसका रिमाइंडर दिलाया करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है? तो बड़ी जामे आयत हम देखने जा रहे हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगो। अब ये पिछली देखें सूरा खत्म हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू पे, अब है ए सारी इंसानियत। ये पैगाम पूरी इंसानियत के नाम है, सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, सारी इंसानियत, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबका ही रब है ना। तो अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को खिताब फरमाया है, या अय्युहन्नास। या अय्युह कब आता है? ये भी निदा के लिए आता है, पुकारने के लिए आता है, लेकिन जब इसके आगे अलिफ लाम से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो फिर या अय्युह आता है, अगर अलिफ लाम से नहीं शुरू हो रहा तो फिर या आ जाता है, फिर जैसे या मोहम्मद, ठीक है? तो या अय्युहन्नास, ए लोगो, क्या लोगों को कहा जा रहा है? पूरी इंसानियत तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम है, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने रब से, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। मैंने आपको तकवा का बताया ना, क्या चीज होती है तकवा? तकवा यानी अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने के लिए गुनाहों से दूर रहा जाए, और अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब लेने के लिए नेकियों की तरफ दौड़ लगाई जाए। कोई नेकी ऐसी ना हो कि इंसान उसको छोड़े, हर नेकी की तरफ ये हिर्स होनी चाहिए, इस लालच के साथ बढ़े कि इससे भी अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा, इससे भी मुझे अल्लाह सवाब देगा। और हर गुनाह से इस वजह से दूर हो, इसलिए नहीं कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शराब पीनी है सेहत के लिए अच्छी नहीं है इसलिए मैं शराब नहीं पीता, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने हराम कर दिया। इसलिए नहीं कि मुझे ये चीज, अब मैं मास्क इसलिए पहन रही हूं कि मैंने जरासीम से बचना है, इसलिए कि भाई मेरा अल्लाह इससे राजी हो जाए कि मैं पर्दे के अंदर जाऊं। तो यानी आप ये देखें कि तकवा ये नहीं है कि किसी भी बुरे काम से बचना या किसी भी नेकी को करना इसलिए हो कि आप उससे कोई दुनियावी फायदा चाहते हैं, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह की रजा इसमें, या अल्लाह के अजाबों से बचने की खातिर। इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू क्यों, अल्लाह से क्यों तकवा इख्तियार किया जाए अल्लाह का, क्योंकि वो रब है तुम्हारा भाई, वो डिजर्व करता है कि तुम उसका तकवा रखो अपने दिल में। और रब कौन होता है, मैंने आपको शुरू से ही बताया, मालिक, खालिक, रोजी रसा, पालने वाला, सस्टेनर, कायम रखने वाला। देखो अगर कोई काफिर अल्लाह को नहीं भी मानता तो वो ये जरूर मानता कि कोई मुझे रोजी देने वाला है, जानवर भी उसको पहचानता है जो उसको रोटी डालता है। तो इंसान तो फिर भी इंसान है, जिसको अल्लाह ने अक्ल दी हुई है वो जरूर कहता है कि हाँ मुझे कोई रोजी देने वाला है, मुझे कोई खिलाने वाला है। अब वो चाहे अल्लाह को ना समझे, किसी और को समझे, वो अलग बात है, लेकिन हर एक की कोई ना कोई एफिलिएशन, कोई ना कोई उसके जज्बात, मोहब्बत उससे होती है जो उसको खिलाता पिलाता है। तो अल्लाह तुम्हारा पालने वाला है, सिर्फ खिलाया पिलाया नहीं, वो तुम्हारा पालने वाला है, और पालने में सब कुछ आ जाता है। अब देखिए एक माँ बच्चे को पालती है ना, तो क्या उसको सिर्फ फीडर पिलाती रहती है? नहीं, वो उसका डायपर भी चेंज करती है, वो उसको गर्मी सर्दी से भी बचाती है, वो उसके जरासीम से भी बचाने की वो करती है, वो उसकी सफाई सुथराई का भी इहतमाम करती है, वो उसकी निगहदाश्त भी करती है। तो कितने सारे काम उसमें आ गए, रब तुम्हें पालता है, परवान चढ़ाता है, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें बड़ा करता है। उस रब का तकवा इख्तियार करना जरूरी है, तुम उसकी रजा हासिल करने का एहतमाम करो, ये जरूरी है, ये जरूरी है कि तुम उसकी नाराजगी से बचो। देखो वही तो तुम्हें पालने वाला है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको किस तरह, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से पैदा किया उसने तुम्हें, यानी इंसानों तुम्हारा ओरिजिन जो है ना, इसीलिए पूरी इंसानियत को कहा गया, सिर्फ मुसलमानों तुम नहीं आदम अलैहि सलाम से पैदा हुए, बाकी काफिर कहीं और से आए, नहीं सब के सब तुम एक आदम की औलाद, एक जान से पैदा हुए। इससे हमें ये बहुत बात समझ आई कि इंसान बंदर से नहीं आगे इवॉल्व होके इंसान बना, कि पहले बंदर होते थे, फिर वो बनते बनते आगे तरक्की करते करते एक दिन इंसान बन गए। यही आज कहते हैं ना साइंस के अंदर, यही थ्योरीज निकाली हुई है ना। तो आज क्यों नहीं बंदर इंसान बन जाते, कोई चीज भी नहीं इंसान बनती, जो जो है वैसे ही रहता है, आज भी इवॉल्व हो जाए ना वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जान से पैदा किया, वह खलक मिनहा ज़ौजहा, और पैदा किया उससे उसका जोड़ा यानी बीबी हव्वा को, आदम अलैहि सलाम की पसली से पैदा किया। वो सो रहे थे, जब सो के उठे तो अपने पास अपनी बीवी को पाया तो उससे मानूस हो गए, ऐसे मानूस हो गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम के दिल को बहलाने के लिए हजरत हव्वा को बना दिया, अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम के लिए किसी मर्द को नहीं बना दिया। आप ये बात नोट करें कि अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, मर्द के लिए अल्लाह कोई मर्द भी बना सकता था कि आदम जैसा ही एक और आदम बना देता। तो मर्द से मर्द की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और ना ही मर्द से मर्द की जो जिनसी जरूरत है वो पूरी हो सकती। ये औरत ही को अल्लाह ने बनाया कि जो मर्द के साथ जोड़ा बनती है, जो आज जोड़े बनाए गए हैं इस आयत की रूह से भी वो अननेचुरल है, एबनॉर्मल है, वो नॉर्मेलिटी नहीं है, ये जोड़ा बन ही नहीं सकता, मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ। तो यहां से हमें पता चला कि उसका जोड़ा बनाया अल्लाह ने किसके साथ, हवा के साथ, औरत के साथ। वबस्सा और फैला दिए मिनहुमा उन दोनों से रिजालन कसीरम वनिसा, बहुत सारे बेशुमार मर्द और औरतें। वो दो थे, उनसे अल्लाह ताला ने कितनी इंसानियत को पैदा फरमा दिया कि देखें आज अगर बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं तो वो कितने हैरान हो जाएंगे, कितनी मखलूक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमंस। तो ये उनकी ही औलाद है सारे, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे कोई भी जुबान बोलता है, चाहे वो चपटी नाक वाला है या सीधी नाक वाला है, चाहे वो किसी भी कबीले कुंबे कौम उससे ताल्लुक रखने वाला है, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला है, वो सब इन्हीं एक आदम और हव्वा की औलाद। अब ये बताने से हमें क्या पता चलता है, बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं, और वो ये कि जब भी इंसानों को देखो तो ये बात याद रखो कि हमारे अम्मा और अब्बा एक ही थे, तब आपको उससे नफरत दुश्मनी ये नहीं पैदा होगी, बल्कि दिल के अंदर खैरख्वाही पैदा होगी। ठीक है, जब देखें आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि आपको पता चलता है इसके और हमारे परदादा एक ही थे, तो कितना वो अपना लगने लगता है, कितना वो अच्छा लगने लगता है, कितनी उससे खैरख्वाही और हमदर्दी हो जाती है। यहाँ पे तो लोग एक बरादरी वालों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, अच्छा आप फलां बरादरी से, हम भी उससे, तो फौरन उनके साथ ऐसे शीरो शक्कर हो जाते हैं कि तो हमारे अपने हैं। और कहाँ हमारे तो सबके वालिदैन एक ही हैं, हमारा ओरिजिन सेम है। इससे आपस के अंदर कितनी हमदर्दी खैरख्वाही के जज्बात होने चाहिए, और जब खैरख्वाही होगी तभी आप किसी को खैरख्वाही वाला पैगाम भी पहुंचा सकेंगे ना। नफरतों के साथ ये दीन का पैगाम नहीं आगे जा सकता, नफरतों के साथ, कीनों के साथ, दुश्मनियों के साथ, ये ऐसे वैसे इनके साथ, फिर ऐसे जज्बात रखते हुए आप कैसे किसी के साथ खैरख्वाही कर सकते हैं, कैसे किसी को वो पैगाम दे सकते हैं जो हो के अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाया। तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे अपने ही हैं, क्योंकि हम एक ही वालदेन की औलाद हैं। और दूसरी बात ये कि देखें जब पता चल जाता है कि एक ही वालदेन थे, तो यहां से अल्लाह ताला ने जड़ काट दी रेसिज्म की, रेसिज्म खत्म। आप चाहे किसी रंगो नस्ल से हैं तो एक ही माँ बाप की औलाद ना, माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा ज्यादा गोरा होता है, कोई कम होता है, तो यहाँ पे सारे जब एक ही औलाद है तो फिर किस बात की बर्तरी, किस बात की एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि हम उससे ज्यादा बढ़ के हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा खानदान इससे ज्यादा आला है, सिर्फ इसलिए कि हम जो जुबान बोलते हैं वो इससे ज्यादा मतलब अच्छी जुबान है, खुद ही बना ली अच्छी जुबानें भी, और ये तो कमतर हैं और हम ज्यादा हैं, या खुद ही निकाली है ये तरीके, और या हम फलां जगह के रहने वाले हैं इसलिए हम आला हैं, हमारा ताल्लुक फलां नस्ल से है इसलिए हम आला हैं, या हम बहुत अमीर हैं इसलिए हम आला हैं। ये सारी चीजें खत्म हो गई ना, तुम तो सारे ही एक ही माँ बाप की औलाद हो, फिर आला किस बात पे हुए? आला होने का सिर्फ एक वजह हो सकती है, सिर्फ एक रीजन हो सकता है, और वो है तकवा, कि जिसमें तकवा जितना ज्यादा होगा वो उतना ही दूसरे से ज्यादा बढ़ के होगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। तो आप मुझे बताएं आज क्या ये मयार है? कुरान की आयत ये कह रही है, और हमारे मयार क्या है आला और बढ़ के दूसरों से होने के, कि हमारे पास पैसा बहुत है, या हम उर्दू बोलने वाले हैं, या हम पंजाबी बोलने वाले हैं, या हम पश्तो बोलने वाले हैं, या हम गुजराती बोलने वाले हैं, या हम क्या बोलने वाले हैं, तो हम इसलिए सबसे आला हैं और हमारी बरादरी भी सबसे ऊपर है, और अपनी बरादरी के किस्से कहानियां, और दूसरों को ना ये तो बड़ी घटिया बरादरी के हैं। आपको पता है ये हिंदुओं के अंदर चीजें हैं, ये बरादरियों की बेस के ऊपर फखर करना, कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्रा को अपने से इतना घटिया और नीचे समझता है, वो कहता है ये भगवान के पता नहीं पैरों से पैदा हुआ हुआ, और हम आला नस्ल है, हम तो पता नहीं क्या, हमें भी उनके साथ रहते रहते ना तो हमारे अंदर भी ये चीज आ गई कि हम कुछ को किसी का किसी कबीले से होना, किसी बरादरी से होना, ये उसके आला होने की निशानी नहीं है। बरादरी तो अल्लाह ताला ने नामों के लिए बनाई कि आपकी एक पहचान हो, जैसे आपका नाम है वो आपकी पहचान है, इसी तरह आप किस खानदान से आ रहे हैं ये आपकी एक पहचान है, इसकी बेसिस पे हमने सोच लिया हम सबसे आला है, हमने किसी और में रिश्ता भी नहीं करना क्योंकि हमसे आला थोड़ी है कोई, सब हमसे घटिया है, नीचे हैं। यहाँ पे तो बताया गया तुम सारी एक ही माँ बाप की औलाद हो, अगर वो घटिया तो फिर तुम भी घटिया, और अगर तुम आला हो तो वो भी आला है। तो देखो हमारे आज के मयार, मुझे ना इतना जब भी ये सूरा पढ़ाने लगती हूँ एक बात का इतना दुख होता है कि अभी मैं आपको बहुत दफा कहूंगी कि जमाना जाहिलियत में ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं जमाना जाहिलियत की बात नहीं कर रही, ये तो आज की बातें हैं, यानी गोया हम आज भी जहालत में रह रहे हैं। इस्लाम आ गया, हाँ इस्लाम 1400 साल पहले आया था, और उसके बाद लोगों ने अपने आप को जहालत के अंधेरों से निकाला था, लेकिन हम तो दोबारा गर्क हो गए उन्हीं अंधेरों में, हमने नहीं उन चीजों को छोड़ा, हमने उनको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है, और आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, और ये सिर्फ कुरान में पढ़ने के लिए ही है, क्लासों में नंबरें लेने के लिए, रटने के लिए तर्जुमे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हम फिर वो ही होते हैं जो हम पहले से थे, उन्हीं अंधेरों के अंदर वो ही हमारी बातें, वो ही हमारा माइंड सेट कि नहीं ये तो घटिया है। क्या सीखते हैं हम फिर कुरान से, क्या हमारे सर्टिफिकेट हैसियत रखते हैं कि अगर हमारे दिमागों से ये चीज नहीं जाती, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, मालदारी की बेसिस पे हो, स्टेटस की बेसिस पे हो, बोलने चालने की बेसिस पे, तो आज देखें दुनिया दुनिया इस मसले से गुजर रही है, और अभी तक इस चीज को वो खत्म नहीं कर पाए कि ये रेसिज्म ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कलर रिलीजन रेस, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए वो नहीं कर पाते। आज भी देखें इनके हाँ मसला है, हमारे पास तो ये आयत उतार के ये मसला ही खत्म कर दिया गया, और जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल्विदा में फरमा दिया किसी काले को गोरे पे, किसी को गोरे को काले पे, किसी को अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, फौकियत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पे, वो तकवा वाला चाहे नौकर है आपका वो आपसे बढ़ के है, वो तकवा वाला चाहे झोंपड़ी में रहता है वो आपसे बढ़ के है, अगर आपके अंदर तकवा नहीं है तो वो कोई भी जुबान बोलता है वो चाहे काले रंग का है। क्या हजरत बिलाल काले रंग के नहीं थे तो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिसों में नहीं क्या बैठते थे, वहीं पे बड़े बड़े सरदार बैठते थे, वहीं पे वो बैठते थे, क्या उनको बाहर बिठा के रखते थे, नहीं तुम तो नौकर हो जाओ। हालांकि उस सोसाइटी में तो इतना गुलामों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, इतना बुरा सलूक था, ये आप सोच ही नहीं सकते, उनको भेड़ बकरियों जानवरों की तरह समझते थे, कहाँ उनका स्टेटस रेज किया गया, बराबर का स्टेटस दिया गया, हम तो आज अपने नौकर को अपने बराबर नहीं समझते, गुलाम तो दूर की बात है, गुलाम तो खरीदा होता था ना, हम तो फिर भी नौकर हैं, ये नहीं है, ये गुलाम नहीं है, ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये नौकर हैं, हम उनको अपने साथ नहीं बिठाते, हम उनको अपने बराबर नहीं खाना खाने देते, अपने बर्तन नहीं यूज करने देते, ये नौकर हैं। अल्लाह हु अकबर, तो तुम्हारा तो कोई भी फर्क नहीं है, तुम तो एक ही माँ बाप की औलाद हो, अब इसके बाद फिर क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए। तो इस आयत को समझें और इसको अप्लाई करें, और ये जो माइंड सेट लेके हम इंडो पाक के मुसलमान एक माइंड सेट के ऊपर है ना, बर्तरी के बर्तरी, बस हम तो पैदाइशी लिहाज से ही ऊपर हैं, क्योंकि हमारे ये जो वॉट एवर रीजन्स, उसको खुदा के लिए निकालें, और ये नस्ली इलाके की और लिसानी बुनियादों पे जो भी आपके जहन के अंदर अपनी अपने आप को ऊपर और करने की जो है ना, इस सोच को खत्म करें, ठीक है। आप एक माँ बाप की औलाद हैं, देखें आदम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, आपने देखा था ना, मिराज भी उनको एक तरफ देखते थे तो खुश होते थे, एक तरफ देखते थे तो रोते थे। इस तरफ उनके वो बच्चे हैं जो कि ईमान वाले, जो आगे बढ़ गए, एक तरफ देखते तो रोते। आप देखो, हम अपने बच्चों के लिए इतने परेशान रहते हैं, इतने फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए रोते हैं। हाँ, इनका ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ईमान ना चला जाए, ये ना हो जाए। उनकी तो सारी ही औलाद है ना, सब उनके ही बच्चे हैं, तो उनको भी कितनी तकलीफ है। ये वाले मेरे बच्चे कि जहन्नुम में चले जाएंगे, और एक तरफ को देखते हैं तो ये जन्नत में जाने वाले बच्चे, तो उनके लिए सब सेम है। लेकिन देखो, आगे जाके लोगों ने कैसे एक दूसरे के लिए ऐसे जज्बात पाल लिए जो खत्म ही होके नहीं देते। इन मुल्कों में अपनी तरह की रेसिज्म है, हमारे मुल्कों में अपनी तरह का रेसिज्म है। और फिर औरत कोई घटिया मखलूक नहीं है, यहां से पता चला औरत का तो वजूद मर्द से ही निकला है, वो घटिया कैसे हो गई? जैसे औरतों को पहले जमानों में, मिडीवल वक्त में, जब आप कोई देखते हैं इस तरह के इन लोगों के, वो क्रूसेडर्स के जमाने की या इस तरह की वाइकिंग्स के, उसमें आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप कभी पढ़ते हैं, तो जाहिर है इन लोगों के पास तो इस्लाम नहीं था। वो औरतों को इस कदर घटिया समझते थे कि यानी औरत की कोई वैल्यू नहीं थी। तो हालांकि औरत का बताया गया वो मर्द का ही हिस्सा है, इसीलिए मर्द मायल होता है ना औरत की तरफ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब दूसरी दफा क्यों ये बात कही गई? देखें, जो आप अहकामात आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, जहन में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि वो खानदानी जिंदगी से मुतालिक है। अब चाहे आगे सिला रहमी की बातें आ रही हैं, विरासत की बातें आ रही हैं, यतीमों की बातें आ रही हैं, कमजोर औरतों की बातें आ रही हैं जो बेवा हैं या जो वैसे ही कमजोर हैं, अपने हक खुद नहीं ले सकती। अब जो ये फैमिली लाइफ होती है ना, इसके जो भी कानून दिए जाएंगे उनको अगर कोई तोड़ता है, तो ना तो कोई ऐसी अदालत है, ना कोई पुलिस है, ना कोई पहरे लगा सकता है आपके ऊपर कि आके आपको चेक करता रहे, आप यतीम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आप विरासत में डंडी तो नहीं मार रहे, आप ये आदमी है तो वो औरत के साथ कैसा सलूक कर रहा है, ये कोई आके इसके ऊपर आपको पकड़ेगा नहीं। कोई इस तरह की मुल्कों के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है। इन कवानीन को वो ही ओबे करेगा जिसमें अल्लाह का डर होगा, और जिसमें खुदा खौफी नहीं है ना, उसके लिए कुछ भी ये अहकामात कोई भी अहमियत नहीं रखते। नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे इन जगहों पे जुल्म और ज्यादती आसान भी बहुत है, तो पकड़ने वाला जो कोई नहीं है, को पूछने वाला ही नहीं है, वो खुद इतने, कोई यतीम है, कोई बेचारी बेवा औरत है, कोई मिस्कीन औरत है, वो इन्होंने क्या पूछना है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमारा क्या कर सकते हैं, कहीं जाके किसी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे तो क्या कर लेंगे, इनके पास क्या प्रूफ है। तो उस वक्त अल्लाह कहता है वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई ऐसा पिसा हुआ तबका अपना हक खुद नहीं ले सकता, लेकिन याद रखना एक अल्लाह की जात है, उससे डर जाओ। पहले का इत्तकु रब्बकुम, अब कहा इत्तकुल्लाह। पहले अल्लाह ने अपनी रबूबियत का वास्ता दिया इंसानों को कि देखो अल्लाह तुम्हारा रब है, इस वास्ते तुम उससे डरो, इस वास्ते तुम उसको राजी करने की कोशिश करो, इस वास्ते तुम गुनाहों से बचो क्योंकि वो तुम्हारा रब है। अब कहा अल्लाह, वो जो इबादत के लायक है, रब में ना शफकत है और इसमें जरा यानी रोब है, वो तुम्हारा रब और वो तुम्हारा अल्लाह है, और वो है अल्लादी, वो जात है, तसअलून बिही, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो उसके नाम पे। जब भी कोई किसी को किसी से काम कराना होता है तो कैसे करता है, अगर कोई नहीं भी सुन रहा उसकी बात तो वो बंदा क्या कहता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें उस रब का वास्ता है, तुम ऐसे वास्ते देते हैं ना, तो तुम उसका नाम ले लेके उसके वास्ते दे दे के अपने काम निकलवाते हो, लेकिन उसको भी तो याद रखो, उसके नाम के ही वास्ते करते हो ना तुम। वल अरहाम, और रहमों के बारे में भी अल्लाह से डरो। अल्लाह, जिसने रहम बनाए हैं, ये रहमी रिश्ते बनाए हैं, रिश्तेदारियां बनाई हैं, यानी मतलब अरहाम से मुराद कौन सी है, जिनको हम कहते हैं खूनी रिश्ते। सीधी सीधा इसका सिंपल जो आपको मैं बताऊं वो ये है, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते कौन से होते हैं? खूनी रिश्ते के अंदर आपके वालदेन का साथ है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, खाला मामू चचा फूफी और उनके बच्चे आ गए, दादा नाना नानी दादी, ये सब चीजें रहमी रिश्ते हैं, इनको हम खून के रिश्ते अपनी जुबान में बोलते हैं। इनके बारे में भी अल्लाह का डर रखो, यानी इनको तोड़ने से बचो। और दूसरा मतलब है कि रिश्तेदारी के नाम पे भी तुम एक दूसरे से हक मांगते हो या हक जिताते हो कि जो है ना आपका मेरे साथ ये रिश्ता है, तुम्हारे मैं तो तुम्हारे मैं तुम्हें इस रिश्ते का वास्ता देती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हूं, इस वजह से मैं तुम्हें ये कहती हूँ, ये भी तो हम वास्ते देते हैं ना। तो दोनों ही मतलब हो गए कि अल्लाह से डरो जिसके नाम के ऊपर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रहम के रिश्तों के बारे में, और दूसरे ये कि रहम के रिश्तों से भी तुम लेके और उनके जरिए भी तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। तो देखिए ये जो अब यहाँ पे आ गया ना रिश्तेदारी की बात, ये है वो चीज जो मैं कह रही हूँ आपको कि माशरे में अगर आप सुकून चाहते हैं तो रिश्ते नाते मजबूत होने चाहिए, खानदानी जिंदगी मजबूत होनी चाहिए, और रिश्तेदारियां निभानी इंसान को सबसे ज्यादा मुश्किल काम लगता है। इसलिए कि रिश्तेदारों से इंसान को तकलीफ भी पहुंचती है, उनके साथ जाहिर है उठना बैठना, उनके साथ मेल जोल, उनके साथ हर वक्त का मिलना जुलना, तो उनसे इंसान की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं कि ये जी हमारे रिश्तेदार हैं, इनको तो ये करना ही चाहिए, और जब वो नहीं करते तो फिर बहुत गिले शिकवे और रिश्तेदारियां बार बार टूट भी जाती हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि रिश्ते नाते होने की वजह से इंसान अपना हक जिताता है, और दूसरा जब इसको नहीं पहचानता तो फिर भी वही बात हो गई कि फिर इंसान दूसरा नहीं इस चीज का पास रखता, तो इसमें गिले शिकवे शिकायतें ये सब चीजें बहुत होती हैं। और आप देखें तकवा के बाद यहाँ पे रिश्तों को जोड़ने के बाद एक और बात आई, ठीक है वो बीच में आई है कि मखलूक जो है ये सारी जितनी भी यानी इंसानियत है ये एक माँ बाप से पैदा हुई, और उसके बाद यानी एक चीज आपके जहन में ला दी गई, उसके बाद ये जो स्मॉलर यूनिट है ना खानदान का, इसको संभालना जरूरी है। अब रिश्तेदारी निभानी कैसे होती है और अगर ना निभाई जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमसे नहीं होता, ये हमारे रिश्तेदार तो बड़े ही बुरे हैं, क्योंकि ये तो हमारे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फलां वक्त में ये किया फलां वक्त में वो किया, इनको तो देखो फलां के रिश्तेदार कितने अच्छे, हमारे तो बहुत बुरे हैं। अमूमन ये होता है हमारा। तो पहली बात ये कि अगर ना निभाए रिश्ते क्या फर्क पड़ता है इससे, तो आपको मैं एक हदीस बताना चाहती हूँ जिसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं रिश्तेदारी निभानी है या नहीं निभानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी की हदीस है, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। पढ़ते रहे नमाजें रोजे रखते रहे आप जो मर्जी करते रहे, अगर आपने इस हुक्म को तोड़ा है तो वो याद रखिए जन्नत में नहीं जाएगा। बाज दफा ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी बीवियों को रोकते हैं, तुमने अपनी माँ से नहीं मिलना, तूने अपनी बहन से नहीं मिलना, तुमने अब वो सोचते हैं कि अब ये हमने शादी कर लिया तो अब ये औरत हमारी मिल्कियत हो गई, अब हम जो मर्जी इसको कर दें। और ये समझना चाहिए कि कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। खुद को चाहे कतई रहमी करें नहीं करें, आप अपनी बीवी के रिश्तों को तोड़ रहे हैं तो आपका भी क्या अंजाम होगा? रिश्तों को तोड़ना इतना सख्त बड़ा गुनाह है, और जो इंसान ये हुक्म दे रहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया रिश्ते को जोड़ो, ये अल्लाह का हुक्म है, ताल्लुकात को मत बिगाड़ो। यहाँ पे वला अरहाम का मतलब ये क्या, अल्लाह से डरो इस मामले के अंदर, क्योंकि इन इनको काटने में अल्लाह से डरो। और एक बंदा धड़ल्ले से कह रहा है कि तुमने नहीं मिलना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहम जो है ना, रहम ये यूट्रस को कहती है रहम, ठीक है, ये शाख है, जो शख्स इससे मिले मैं इससे मिलता हूँ, और जो इससे कता ताल्लुक करे मैं उससे कता ताल्लुक करता हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप देखें जी, रहम ना कयामत के दिन ये खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा अल्लाह इन्होंने मुझे तोड़ा था, तो अल्लाह ताला कहेगा कि जिसने तुझे तोड़ा मैं उसको तोड़ता हूँ, जिसने तुझे जोड़ा मैं उसको जोड़ूंगा। उस दिन यानी इस रहम की बेस के ऊपर भी फैसले होंगे। जी हाँ, और इसको निभाने का क्या फायदा है? इसको निभाने का ये फायदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये पसंद हो कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र लंबी हो, तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। जी अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रोजी बढ़े, आपकी उम्र लंबी हो, तो सिला रहमी करें। इसी तरह बाज़ औरतें हैं वो मर्दों को रोकती हैं सिला रहमी करने से, तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, बहन भाई को छोड़ दो, बस मेरे होके रहो, मेरे मेके वालों से मिलो, अब तुमने उनसे नहीं मिलना। तो ये वो क्या कर रही हैं, खुद सोच लें फिर। और इससे भी एक और ज़्यादा खौफनाक हदीस है जो सुने तो इंसान सोचता है कि इट्स नॉट वर्थ इट कि ये हम करें, इस तरह के काम करें। ना कोई औरत अपने शौहर को रोके, ना कोई आदमी अपनी बीवी को रोके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह भी, कोई गुनाह बगावत और कतई रहमी से ज्यादा इस बात का अहल नहीं है कि अल्लाह इसकी वजह से दुनिया में भी सजा दे और आखरत में भी आखरत के अजाब में को भी बतौरे जखीरा रख ले, जखीरा करके रख ले आखरत में भी उसके लिए अजाब, यानी वो उसके लिए तैयार है वहां पे, और दुनिया में भी अल्लाह सजा देता है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुनिया में बच जाओगे, बाज लोगों को दुनिया की सजाओं का ज्यादा डर होता है, आखरत का नहीं इतनी परवाह होती। तो ये देख लें कि ये वो गुनाह है कि दुनिया में भी बचोगे नहीं, दुनिया में भी इंसान के ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, मसाइल, एक के बाद एक मसला आ रहा है। तो उस वक्त देखना चाहिए कि या अल्लाह कहीं मैंने कोई रिश्तेदारियां तो नहीं काटी, या मैं अपने शौहर को तो नहीं कहती कि आप रिश्तेदारियां काटें। और अब ये भी जानना जरूरी है कि सिला रहमी होती क्या है, किस तरह की जाती है। ये नहीं सिला रहमी होती कि आप कोई आपसे अच्छा करे आप इससे अच्छा करें, ये तो अदले का बदला ही है ना, ठीक है उससे तो सारे ही अच्छा करेंगे। सिला रहमी ये है कि जो आपसे कतई रहमी करे उससे भी आप सिला रहमी करें, ये असल सिला रहमी। यानी जो आपके साथ अच्छे हैं रिश्तेदार आपके, उनसे बनती है, ठीक है आप उनके साथ भी अच्छे हैं, लेकिन जो आपके साथ नहीं अच्छा करते, आप उनके घर में जाके बैठते हैं वो पूछते भी नहीं, उनको परवाह भी नहीं, वो उठ के चले जाते हैं, आप बैठे रह जाते हैं वहां पे, आप कहते हैं हम ही पागल हैं, मैं ही हमेशा फोन करती रहूं, इनको कभी नहीं तौफीक होती कि ये फोन करें, क्योंकि मैं ही इनके हमेशा काम आऊं, इनको तो जब बुलाया था तो ये तो नहीं हमारे काम आए थे, और मैं इनकी दावतों को कबूल करूं, ये तो हमारी दावत को कबूल नहीं करते, ये तो हमारे घर आते नहीं, हम क्यों इनके घर जाएं, मैं क्यों उनको शादी पे बुलाऊं, इन्होंने कोई बुलाया था हमें। यानी हम अदले बदले करते हैं, अदले बदले ये तो नहीं सिला रहमी होती। बात तो ये है कि उन्होंने जो मर्जी किया हमने सिला रहमी करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। रिश्तों को जोड़ना ये मतलब नहीं है कि आपने देखना है कि वो क्या करता है, रिश्तों को जोड़ना ये है कि इररिस्पेक्टिव वो क्या करता है, आपने भलाई करना है उनके साथ, आपने खैरख्वाही करनी है उनके साथ, आपने जब वो बीमार हो उनकी अयादती करनी है, आपने जब वो परेशानी में उनकी दिलजोई करनी है, आपने जब वो मसले में हो उनको मसलों से निकालने के लिए कोशिश करनी है, आपने उनकी मदद करनी है, जब उनको आपसे अच्छा मशवरा चाहिए आप मशवरा दें, जब उनको आपसे कोई हमदर्दी चाहिए आप हमदर्दी के लिए खड़े, ये सिला रहमी होती है। ऐसे नहीं कि आप ये क्या करते हैं हम क्या करें, अदले के बदले ही हम तो हर चीज में, अगर आप नोट करें ना तो कहते हैं पता नहीं हमारी कोई नेकी बचनी भी है कि नहीं, क्योंकि आप देखो वहां हम नेकी करते हैं जहां पे हमें या तो कोई रिटर्न करना है या कोई एक्सपेक्टेड है कि यहां से हमें रिटर्न मिल जाएगा, बस। यानी या तो हमें वो कुछ हमारे साथ भलाई कर चुका है उसका हमने बदला उतारना है, उन्होंने भी हमें हमारे साथ ये कि हमें भी अब चाहिए ये करना, ये, या फिर हमें ये होता है अच्छा मैं अब करूंगी ना तो फिर भी ये भी कुछ ये भी मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, बस। और जहां पे कुछ नहीं चाहिए होता वहां पे परवाह भी नहीं होती, या जहां पे किसी ने नहीं हमारे साथ किया होता तो हमें भी क्या जरूरत है इसे करने की। अल्लाह अकबर, तो पता नहीं आधी तो हमारी नेकियां इसी तरह ना कयामत के दिन चली जाएंगी, ये तो तुमने अदले बदले किए थे। तुम्हारी तो नीयत थी नहीं अल्लाह को राजी करने की, तुम्हारी तो नीयत ही ये थी सिर्फ कि ये बस इसका बदला उतारना या ये हमें कुछ दे दे। तो ये होती है सिला रहमी, ये होती है कि आपने जोड़ के ही रखना है। जरूरी नहीं है कि आपका दिल बहुत ही उनके साथ मिला हो और बहुत ही आप की एक तबीयतें हैं और आप के एक ही मशगले हैं और आप एक ही चीजों को पसंद करती हैं और एक ही चीजों को नापसंद करती हैं। जरूरी नहीं है ऐसा, हो सकता है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो आपसे, हो सकता है आपकी कभी भी उनके साथ बात करें तो बनती ही ना हो। तो ये नहीं कहा कि जिनके साथ बनती है उनके साथ रखना है, जिनके साथ नहीं बनती। बहुत दफा ऐसा होता है एक ही घर में बच्चे होते हैं, सबकी नेचर्स मुख्तलिफ होती हैं, नहीं उनकी आपस में बनती, तो नहीं भी बनती। आप जब भी आप उनके साथ बात करें तो वो उल्टी कोई बात कर रहे होते हैं, तो तब भी आपने रिश्तों को जोड़ना है। दिमाग नहीं भी मिलते तब भी जोड़ना है, समझ आई? इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई गई यहाँ पे कि इस शर्त पे जोड़ोगे कि जब वो आपको आपका हक देंगे तो आपने भी उनको देना है। ये शर्त नहीं लगाई गई कि जब आपकी तबीयतें मिलेंगी तो तब भी आपने उनके साथ अच्छा करना है, नहीं। और जब वो आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना दे तो आपने भी डिसहार्ट होके बैठ जाना है, नहीं। ठीक है, उनकी तरफ से हकूक अदा हो या नहीं हो वो उनका मामला है। आप कि उनसे नहीं भी बनती तो तब भी रिश्ता जरूर निभाना है, और बहुत ज्यादा शीरो शक्कर नहीं भी हो रहा है लेकिन रिश्ता निभाना है। ठीक है, खैर खबर लेनी है, उनको कॉल करना है, उनके लिए जब भी उनको जरूरत हो आपने वहां पे मौजूद होना है। हमारा हाल ये होता है कि जो अमीर रिश्तेदार होते हैं या जो हमें पूछते हैं उनके तो हाल अहवाल हम भी कर लेते हैं, और उनके तो जो हर काम में हम अटेंशन हो के सबसे आगे खड़े होते हैं, और जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको पूछना भी नहीं। मुझे किसी ने एक बड़ी बड़ी एक अफसोसनाक बात बताई थी, उनके वालिद समझ ने उनको छोड़ के चले गए थे, तो वो मुझे इतने दुख से बता रही थी कि उन्होंने कहा कि उनकी खाला वगैरह उनको खाने पे बुलाते थे तो ये लोग शौक से जाते थे कि हमें भी दावत पे बुला लिए तो हमें अच्छा खाने को मिलेगा, जाहिर उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो कह रहे हैं जब वहां जाते थे तो वो सबसे पहले खाला सारे बर्तन मेहमानों के धुलवाती थी और सारी जो भी काम करवाना होता था करवाती थी, फिर जो खाना होता था वो देती थी। ये हमारी सिला रहमी देखें कैसी, बाज दफा दोस्तों को हम आगे रखते हैं और रहम के रिश्ते जिनका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। ये नहीं कहा दोस्तों के साथ दोस्तियां निभाना, ये नहीं कहा यहाँ पे, कहीं नहीं कहा। वो तो दोस्तों के साथ दोस्ती तो आप अपनी मर्जी से निभाते ना, आप अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं, अपनी मर्जी से दोस्तियां निभाते हैं। जो नहीं दोस्त पसंद आता आप उसको छोड़ के दो ही और दोस्त बना लेते हैं, वो आपकी आपके दोस्त बनते ही वो हैं जो आपके जैसे हम ख्याल होते हैं, तो इसलिए दोस्तियां तो निभाते ही आप। लेकिन रिश्ते निभाने इसलिए मुश्किल है कि वो आपकी चॉइस नहीं है, वो अल्लाह ने जो आपके रिश्तेदार बना दिए बस वो वही है जो आपके हिस्से में आ गए, अल्लाह ने बना दिए। अब बहुत दफा हमारी नहीं बनती है तो अब हम क्या करें, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जब उनको आप निभाएंगे तो तभी अजर है। तो हमने ये देख के नहीं निभाने रिश्ते कि ये कैसे हैं हमारे साथ, ये क्या सलूक करते हैं हमारे साथ, ये हमसे नाइस हैं या नहीं है, बल्कि ये सोच के निभाने हैं कि अल्लाह का हुक्म है, बस दैट्स इट, अल्लाह का हुक्म है। बाज माएं अपने बच्चों को रहम के रिश्तों से दूर करती हैं, तुम्हारी फुप्पी है वो ऐसी है, तुम्हारे चाचा है वो ऐसा है, तुम्हारे ऐसा है, और बस उनसे दूर रहो। बाज लोग इस तरह बच्चों के जहनों में डालते हैं, बाज मर्द अपने बच्चों के जहनों में डाल देते हैं इस तरह के ख्याल। बाज औरतें ये कहती हैं अब तुम्हारी खाला के साथ मेरी बातचीत बंद है, तुमने भी उनसे बात करनी, आप तो फिर तोड़ रहे हैं रिश्ता। किसी जगह पे उनकी नहीं अगर बन रही किसी रिश्तेदार के साथ, लेकिन वो बच्चे का तो रहम का रिश्ता है ना, उसके जहन में कूट कूट के भर दिया कि ये तो इतने बुरे हैं, ताकि वो बच्चा जो है कभी भी उनके साथ बात ना करे, या अगर अपनी नहीं बन रही है तो उसको तो बात करने दे। लेकिन हम इस चीज के मुजरिम करार पाते हैं जिस वक्त हम रिश्तों को तोड़ने के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अपने बच्चों को गुनाहगार करते हैं। ये औरतों को बहुत समझनी चाहिए बातें। और देख लें, ये कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताया करते थे, खुतबों के अंदर, शादियों के उस खुतबे में, जहां पे सबसे ज्यादा नाराजगियां रिश्तेदारों की हो रही होती। हमने नहीं आना, हमारा कार्ड पे ये नाम नहीं आपने लिखा, हमें तो विद फैमिली नहीं बुलाया, हमारे साथ तो ये हुआ, हमें आपने फोन नहीं किया, हमें आपने फलानी जगह पे इनवाइट नहीं किया, तो हमने तो आना नहीं है। वहां पे कहा गया, अब कहाँ किसको पता होता है निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा है। सारे कहते हैं चलो जो मर्जी पढ़ा जा रहा है, उस वक्त तो दिमाग के अंदर और ही कुछ चीजें समाई होती, मैं लग कैसी रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, मेरी लिपस्टिक ठीक है कि नहीं, वो किसको परवाह, कौन निकाह के खुतबे में क्या पढ़ा जा रहा है। अभी तो हमारे हालात देखे ना, हमें कोई रिमाइंडर रिमाइंडर ही नहीं है हमारे लिए। कितनी बड़ी बात को रिमाइंड कराया गया, कैसी जगह पे, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वहां पे जितने बैठे होते हैं कितना अल्लाह का डर होता है खुद बताएं। निकाह के मौके पे कितना अल्लाह का खौफ होता है, कितना उस रब का खौफ होता है, ये बताएं। अब आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना, आप तो याद रखेंगे ना, जब ये आपके सामने निकाह के खुतबे में बात आएगी तो आप तो ये याद रखेंगे ना कि हम एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन उसको वर्स निकाह कहा गया जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाता है, गरीबों को नहीं बुलाया जाता। यहाँ पे कहा गया तुम अब एक माँ बाप की औलाद हो। हदीस में आता है कुल मखलूक अल्लाह का कुनबा है, अल खलकु अयालुल्लाह, अल्लाह का कुनबा है, ये अल्लाह को सारे ही प्यारे हैं, ठीक है। वो अल्लाह का कुनबा है, चाहे वो काफिर है चाहे मुस्लिम है, तो अल्लाह का बनाई हुई मखलूक है ना। तो लेकिन हमने कितनी तरह की बैरियर्स खड़े कर दिए, कितनी तरह की दीवारें खड़ी कर दी, ये है, वो है, वो फलां है, वो फलां है, फिर उस अल्लाह के नाम पे ही तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, उसका ही वास्ता देते हो, और फिर उसका ही तकवा नहीं इख्तियार करते, डर उसका नहीं है कोई तुम्हें। तो शादी के मौके पे भी इत्तकुल्ला है जनाब, ये नहीं कि शादी के मौके पे इत्तकुल्ला नहीं है, वहां पे जो मर्जी करो, आज अल्लाह को क्या राजी करना, आज तो शादी का दिन है ना। इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, आप देख लें अल्लाह का नाम और रकीब भी है, रकाबा कहते हैं ये, रकीब ये गर्दन के पीछे की साइड को कहते हैं, और रकीब वो है जिसकी नजर गर्दन पे हो, तो अल्लाह तुम्हें वॉच कर रहा है, तुम्हारी निगरानी कर रहा है, याद रखना ये बात, वो तुमको वॉच कर रहा है, तुम पे वॉचफुल है। तब इसके बाद इंसान को कितना डरना चाहिए। देखिए इस्लाह की कितनी सारी बातें हैं इस एक आयत में, रिश्तेदारियां मजबूत हो जाएं और दिलों से कीने और बुग्ज निकल जाएं, तो कितना माशरा भी प्यारा हो जाए ना। अक्सर जो गुनाह होते हैं वो रिश्तेदारियों के बीच में ही होते हैं, जब हकूक मारे जाते हैं, जब विरासतों से हक नहीं दिए जाते, जब गिले शिकवे होते हैं, जब बच्चे वालदैन के सामने खड़े हो जाते हैं, जब बहन भाई एक दूसरे से कट जाते हैं। इसीलिए तो इसको कयामत की निशानियों में से कहा गया ना, ये ऐसे खून सफेद हो जाएंगे, यानी ऐसा वक्त एक आ जाएगा। तो रिश्तेदारियां हमने निभानी है, अब जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमने तो निभानी है, अब आगे कोई निभाए ना निभाए, ठीक है ना। हम तो नहीं किसी के जवाब देना, उसने नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो हम नहीं उसके, हमने तो नहीं अल्लाह के सामने उसका जवाब देना, लिहाजा हम तो वो करें जो अल्लाह का हुक्म है, बाकी उसका मामला अल्लाह की सुपुर्द है। आगे अब ये सूरा, इस सूरत का एक नाम ना सूरतुल आदल व रहमा भी है, सूरतुल आदल व रहमा, रहमा भी है ये सूरत, क्योंकि ये कमजोरों को उनके हक दिलाती है, उनके ऊपर रहम की बात करती है। आप इस सूरत में देखेंगे ये आयात जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे भी, आपको ऐसे लगेगा कमजोरों के साथ अल्लाह खड़ा हुआ है, कमजोर माशरा उसको समझता है ना, ये क्या, ये यतीम मिस्कीन, ये हमें क्या पूछेंगे। लेकिन याद रखो ये कमजोर नहीं है, जिसके साथ अल्लाह खड़ा हुआ वो थोड़ी कमजोर है, और जो इस पोजीशन में है, अगर कोई यतीम है या कोई कमजोर औरत है और उसके हक दूसरे दबा रहे हैं, तो वो भी इन आयतों से हौसला ले, तुम फिक्र ना करो, देखो अल्लाह तुम्हारे लिए वकालत करता है, अल्लाह तुम्हें हकूक दिलाता है। अलग बात है कोई मानता है नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने अहकामात दे के बता दिया कि वो किसके साथ है। वआतुल यतामा अम्वालहुम, और दो यतीमों को उनके माल, यानी यतीमों के जो सरपरस्त है ना, जो गार्डियन है, उनको कहा जा रहा है कि जब यतीम बालिग हो जाए तो उनके माल उनको दे दिया करो। अरे अब ये नहीं कि अब आपकी कस्टडी में था यतीम का माल, तो अब वो बड़ा भी हो जाए बालिग भी हो जाए तो उसको कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर है माल देना किसको अच्छा लगता है। माल जब एक दफा हाथ में आ जाता ना, फिर इंसान कहता है कैसे जाने दूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के बारे में ये फरमाया है कि सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम के साथ बदसलूकी की जाए। आपको पता है इस्लामी माशरे में यतीम खाने नहीं होते थे, ये तो अब हमारे माशाल्लाह मॉडर्न जमानों की इजाद आते हैं यतीम खाने, या ये इन लोगों की चीज़ें हैं जो हमने भी ले ली। पहले वक्त में जब इस्लाम आया है और इस्लाम ने ये यतीमों का जो हकूक दिए हैं, उससे पहले भी ऐसे ही था, लेकिन यानी यतीमों को यतीम खानों में किसी में दाखिल नहीं कराया जाता था, अपने खानदान के ही अफराद उनकी सरपरस्ती किया करते थे। हाँ, मगर उनसे बुरा सलूक करते थे। आज तो लोगों ने कहा कि भाई ये झंझट ही खत्म करो, भाई हमसे नहीं रखे जाते ये यतीम अपने घर में, इनकी जिम्मेदारियां हमसे नहीं ली जाती, जाओ इनको यतीम खानों में दाखिल करो। वो यतीम खानों में दाखिल, उनके माल खुद हड़प कर लिए। और मैंने आपको बताया ना, हम तो जमाना जाहिलियत में रह रहे हैं, हमारे पास तो अभी इस्लाम आया ही नहीं, ये किताबें पढ़ी नहीं है हमारे घरों के अंदर, कुरान भी है, हदीस की किताबें भी मौजूद हैं, कौन मानता है इनको। हाँ मुसलमान है हम बड़े कुरान और ख़त्म करने वाले रमज़ानों में और नमाजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन जहाँ पे माल की बात आती है ना, पैसे की, वहाँ पे बड़ा मुश्किल है ये, वहाँ पे नहीं हम इन चीज़ों को मानते, पैसे में अपनी मर्जी है। हाँ सदका खैरात कर देंगे इसमें से, मगर हड़प करो जहाँ से मिल रहा है, हराम का हलाल का डजंट मैटर। तो ये यतीम खाने वाली चीज़ इंस्टीट्यूट जो था ना, ये इस्लामी मुमलिकत की चीज नहीं है। इस्लामी मुमलिकत में तो उसी के रिश्तेदार, मसलन एक बच्चा यतीम होता है, उसी के चच्चा उसकी किफालत करे, वो बड़ा भाई है वो किफालत करे, दादा है वो किफालत करे। नबी अलैहिस्सलाम जब यतीम हुए थे तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत किसने की थी, एंड में आके तो चच्चा ने ही की थी ना। लेकिन अब के वक्त के अंदर वो चच्चा कहते हैं मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, ये जाए यतीम खानों में। अब एक बच्चे को सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए होता, उसको शफकत भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, तरबियत भी चाहिए, वहां पे कौन तरबियत करेगा। हाँ बस ठीक है, वो एक महरूमी के अंदर रहे वहां पे, और यतीम खानों के जो हालात, और वो कभी अगर आपने देखे हो तो आपको पता चले कि उन बच्चों की महरूमी कैसी होती है। ये जंगों में इतने बच्चे यतीम हुए, बेसहारा हो गए, और उनकी एक दफ़ा मैंने देखी थी, एक बच्ची ने ज़मीन पे ड्राइंग की थी, अपनी माँ बनाई थी, और उसके पेट पे लेटी भी है, और वो पिक्चर काफ़ी मशहूर हुई, जगह पे लोगों ने देखी, मगर उससे पता चलता है कि उस बच्चे की महरूमी को आप सोचें, मगर कितनी बेदर्दी से आज कितने ही बच्चे यतीम खानों में दाखिल करा दिए जाते हैं, क्योंकि उनके खानदान उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो माल देना ये मैं आपको तो बाद में सिखाऊं, पहले तो सबसे ये बात है कि उनको एक घर चाहिए जिनमें उनको शफकत दी जाए, मोहब्बत से रखा जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की अपनी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारे यतीम बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी ली हुई थी, बहुत सारे यतीम बच्चे उनके पास थे, जो बे औलाद जुड़े होते हैं वो यतीम बच्चों को अडॉप्ट कर ले, ऐसे बच्चों को जिनको कोई रखने वाला नहीं, हो सकता किसी का चच्चा भी ना हो सकता किसी का कोई भी खानदान में ना हो, तो वो बच्चे कहाँ जाएं। और फिर उनके जो हकूक की प्रोटेक्शन है, खास तौर पे उनके जो माल है ना, उसके ऊपर लोगों की नजर होती है कि अगर तो मालदार बच्चा है तो उसको घर में रखो, नौकर की तरह बना के रखा हुआ है लेकिन उसका माल सारा खा रहे हैं। और सबसे पहले जो शरीका होता है, जैसे चचा वगैरह होते हैं, वो सबसे पहले उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं,
अब वो बेवा औरत को कौन पूछता है, उसकी कौन सुनवाई, उसकी क्या सुनवाई, वो बेचारी तो एक बेसहारा सी औरत है, उसको का तो कोई बस नहीं चलता, तो यतीमों का माल धड़ल्ले से खाया जाता है। तो कहा गया नहीं, आ तो लिया तमाम वाला, दो यतीमों को उनके माल और बगैर खयानत के दो, पूरा पूरा दो। और आपने खयानत का पढ़ लिया था ना पिछली सूरत में, खयानत तो एक चादर के बराबर भी कर ली, एक सुई के बराबर भी कर ली, तो वो खयानत की भी चीज आग बन के उस आदमी के ऊपर भड़क रही थी कब्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि वो कैसे आग बन के भड़क रही है उसके ऊपर। अल्लाह अकबर, एक जरा सी भी खयानत नहीं करनी। जब वो भाले को जाए, उनके माल उनको दे दो, उनकी कोई दुकानें हैं बाप की छोड़ी हुई, कोई उनकी जायदादें हैं, कोई मकान है, कोई कुछ है, जो भी उनके माँ बाप ने छोड़ा, अब ये यतीम बड़े हो गए, उनको दो उनका जो माल है। वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तैयब। अब ये आप अपने जहन में लेकर आए, आपने अपने माशरे में देखे होंगे, कोई ना कोई तो यतीम आज तक देखा होगा ना, बाज लोगों के खानदानों में होते हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि यतीम का वली जो है, जो भी उसका सरपरस्त है, उसका अच्छा माल रख के अपना खराब माल उसको नहीं देते। वो ऐसे करते होते थे, अपना अच्छा माल उसका अच्छा माल रख लिया और अपना खराब माल उसको दे दिया। चीजों की गिनती पूरी करनी है ना, तो ठीक है गिनती तो पूरी हो गई, चाहे मवेशी जानवर हैं, चाहे कोई और सामान वगैरह है, अपना गंद बला उसके खाते में डाल दिया, खुद उसका अच्छी अच्छी चीजें खुद रख ली। आजकल तो यतीम नहीं भी हो, कोई भी कमजोर तबका है ना, उसके साथ यही किया जाता है, ऐसा ही हाल किया जाता है ना, क्योंकि जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, कोई कोई पता है कि किस इसके पीछे कोई आएगा नहीं, उनके साथ यही किया जाता है। वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और उनके माल ना खाओ अपने मालों के साथ मिला के, यानी ऐसे गड़बड़ ना कर लो कि पता ही ना चले। और जब पता ही नहीं है, कोई खाता नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके बाद जो मर्जी खा लो, जो मर्जी कर लो, माल हड़प कर दो, मिक्सअप जो कर दिया, बाद में बड़ा आसान होगा, लोगों को कह देंगे देखा हमने इतना दे तो दिया, हालांकि उसका जो माल था वो तो किसी और क्वालिटी का था, ये कोई और क्वालिटी है, या ऐसे मिक्स कर दिया पता ही नहीं चलता, कारोबार में लगा दिया, कहीं और ऐसे लगा दिया। इन्नहु काना खूबन कबीरा, ये बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये, यानी चाहे आप यतीम को उसका नहीं देते, वो भी अब सारा यूज करते रहे, यतीम की चीजें वो सारा खानदान यूज कर रहा है, तो क्या रहेगा उसके लिए, वो बड़ा होगा तो वो मतलब छोटे छोटे, आपको आगे पता चलेगा, ऐसे नहीं कि आप समझ सकते कि वो कोई बड़ी चीज हो, कोई जायदादें होंगी तो देनी, चाहे छोटी सी चीज क्यों ना, ये उसकी है, अब वो पूरा खानदान इस्तेमाल कर रहा है, पूरे खानदान ने उसको खराब खरूब कर करके फेंक दिया हुआ, उसकी चीजें हैं, कोई उसके एसी हैं, पंखे हैं, उसके माँ बाप छोड़ गए हुए थे, वो सारी चीजें बिल्कुल रद्दी करके, जब तक वो बड़े हुए उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो ये नहीं कर सकते ना, अपनी गंद बला चीजों को उसके खाते में डाल सकते हैं और उसकी अच्छी चीजें ले सकते हैं, ना उसके माल को खा सकते हैं अपने माल के साथ मिला के ताकि पता ही ना चले, क्योंकि ये बड़े गुनाहों में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचो, सात ना मोबिकात है, सात ऐसे गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह है, और उनके अंदर क्या है, शिर्क करना, जादू करना, कत्ल करना किसी को, किसी जान को जिसको अल्लाह ताला ने कत्ल करने का नहीं कहा गया, यानी उसकी कोई सजा के तौर पे नहीं है या कुछ, उसको कत्ल कर देना, नाहक सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद से पीठ फेर के भागना, और पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना, ये हैं बड़े बड़े गुनाह। और जो इन गुनाहों के अंदर मुलव्वस होता है, जिनको अल्लाह ने फरमा दिया कि ये बड़े गुनाह हैं, फिर आप अंदाजा कीजिए कि उसका फिर अंजाम क्या होगा, कबीरा गुनाह है।
अल्लाह हू अकबर। अब एक और बात, ये इसके अंदर हदीस आती है जामे अल बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मेराज पे देखा था, कुछ लोगों के होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, और उनको ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया गया जो उनके होंठों को पकड़ रहे थे, फिर उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे थे जो उनके नीचे से निकल भी जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा है, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो जुल्मन यतीमों का माल खाते हैं, और वो दर हकीकत अपने पेटों में आग खा रहे हैं, और ये आगे भी आयत आएगी। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीमों के साथ, यानी यहाँ पे खास तौर पे यतीम बच्चियों की लड़कियों की बात आ रही है, कि अगर तुम्हें ये डर है कि तुम इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी अब आप ये अंदाजा करें कि वो बच्ची जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो गई है, अब इस वक्त वो जो उसका सरपरस्त है वली है, वो ये सोचता है कि मैं क्यों ना इससे शादी कर लूं, या अगर चच्चा है तो वो कहता है मैं अपनी बेटे की शादी इससे कर देता हूँ, तो इसकी सारी जायदाद ना हमारे खानदान में ही रहेगी। ऐसा होता है ना बहुत दफा। अब वो बच्चा चाहे 6 7 साल 7 साल का है, वो जवान लड़की है, उसकी शादी पकड़ के उसके साथ कर लेते हैं, इसलिए कि जायदाद तो हमारे घर में ही रहे ना, ये ना बाहर जाए। तो फरमाया कि अगर तुम्हें ये डर है ना कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ये इंसाफ नहीं है फिर, या खुद इंसाफ नहीं कर, खुद वो आदमी है उसकी किफालत के अंदर ये बच्ची थी, अब इसने सोचा कि मैं इससे निकाह कर लेता हूँ, अब लेकिन उसको पता है कि मैं इससे इंसाफ नहीं कर सकूंगा, यानी उसको इंसाफ एक ना करना ये भी है कि जितना मेहर उसको बाहर मिलना था उतना तो देना ही, या तो कम करके देना, ये देना ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारी मिल्कियत ही है ना, घर की बात है, इसमें क्या बात है, ये तो घर की बात, हम घर की बात कह के जो है ना सारे हकूक को सलब कर लेते हैं, वो घर की बात है ना। तो इसके साथ शादी कर ली उसने, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, अरे उस बच्ची के पीछे किसने आना। बुखारी में ये रिवायत है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस आयत का मतलब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि ये जिक्र उस यतीम लड़की का है जो अपने वली के कब्जे में, उसके माल में वो शरीक है, और उसे उसका माल और जमाल अच्छा लगता है, वो चाहता है कि इससे निकाह कर ले, लेकिन जो मेहर और जगह से उसको मिलता है उतना ये नहीं देता, तो इससे मना किया गया कि फिर वो तुम छोड़ दो, फिर जाओ किसी और से कर लो शादी, फिर इसके पीछे मत पड़ो। मतलब है कि वो लड़की है, अब उसका उसका उसके बाप का पैसा इसके बिजनेस में लगा, ये इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, मिसाल के तौर पे दे रही, अब ये अकेली वारिस है, अब इसको है कि ये कहीं अगर इसकी बाहर शादी करूंगा तो मेरे तो बिजनेस से पैसा निकालना पड़ेगा, तो अपने पास ही रख लेता हूँ। दूसरा ये कि ये इसको जब माल में, यानी उसके कब्जे में उसका माल है, उसका वो शरीक है उसके माल में, अब उसको अच्छी भी लगती है, लेकिन उसको ये पता है कि ये तो एक मतलब इसके पीछे कोई है नहीं ना, तो इसको जितना भी मेहर दे दूं क्या फर्क पड़ता है इससे, और उसके माल पे कब्जा कर लेगा, उसके जो बिजनेस में उसके बाप का पैसा लगा हुआ है उस पर कब्जा कर लेगा। तो अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं, इंसाफ अगर कर सकते हो तो फिर करो, अगर नहीं कर सकते ना इंसाफ, फन के हो तो निकाह कर लो, माता बालकुम, जिसको जो तुम्हें पसंद आए किसी और से, या नहीं कर लो किसी और से कर लो जहां पे तुम्हें पसंद आए। यहाँ यहाँ से एक बात बहुत अहम पता चलती है, निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको, क्या मतलब, यानी निकाह इस बेस पे, एक इसकी शर्त कह ले, या एक निकाह में ये भी देखना चाहिए कि जहां पे इंसान को पसंद आए वहां पे निकाह नहीं करने चाहिए, जहां पे दिल नहीं कर रहा निकाह करने का, मसलन बाज माए माँ बाप इतना जोर देते हैं कि जबरदस्ती कहीं निकाह करा दिया, नहीं, वो तुमने यही करना है, चाहे अब उस लड़के को कोई और पसंद है, वो कभी अपनी बीवी के साथ फिर इंसाफ ही नहीं कर पड़ता, या फिर वो शादी चलती ही नहीं है, वो कहता सारी जिंदगी यही कहता रहता मैं तो कहीं और करना था, मुझे तो कोई और पसंद थी, इस बेचारी का क्या कसूर। तो जहां पे आदमी को जिसने शादी करनी है उसको जो पसंद आए वहां निकाह करो, क्योंकि मर्द अपना खुद निकाह कर सकता है ना, तो निकाह कर लो, उनको कहा फन की हो, उनको जरूरत नहीं होती कि वो किसी को वली बनाए, आदमी को नहीं जरूरत होती, तुम निकाह कर सकते हो जाओ तुमको पसंद आए, मगर बाज
बच्चे अपने वालदेन की खातिर या उनके एक्सप्लॉइट करने की वजह से, ब्लैकमेल करने की वजह से वो ऐसी जगहों पे शादियां कर लेते हैं जो उनको कोई बिल्कुल पसंद नहीं होती। ठीक है, तो यहां से ये जोर जबरदस्ती के निकाह नहीं होने चाहिए, यहां से ये पता चल गया। इसी तरह लड़की का भी निकाह जो करना है वो उसकी मर्जी से होना चाहिए और वो इस चीज को एक्सेप्ट करे। इसीलिए तो उसे कबूल कबूल करवाया जाता है कि तुम्हें कबूल है कि नहीं है। वली का तो होना अलग बात है, वली की कबूलियत अलग बात है, वो लड़की की भी रजामंदी होनी चाहिए। और इसी वजह से लड़की और लड़के को एक दूसरे को देख लेना चाहिए शादी से पहले, ये बाद में ये ना कहें ये तो मुझे पसंद ही नहीं था, या ये मुझे पसंद नहीं आई थी लड़की, ये मेरे किसी साथ करती। देख लेना चाहिए, मत देखने का मतलब ये भी नहीं कि आप घूमना ही शुरू कर देना चाहिए, अब ये देखना मुझे पसंद आती है कि नहीं, तो चलो जरा थोड़ी देर डेट करें तो फिर उसके बाद पता चलेगा, ये नहीं है। ठीक है, तो मा तहबलकुम मिनन निसाई, औरतों में से जो भी तुम्हें पसंद आए, मतना वसुलाता व रुबा, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, जितनी तुम्हें चाहे तुम चार की लिमिट तक कर सकते हो। और फिर तुम इनको छोड़ दो ना, इन यतीम बच्चियों को छोड़ो, तुम जाओ जाके कहीं और कर लो, दो करो, तीन करो, चार करो। यहां पे आके औरतों का एकदम मूड ऑफ हो जाता है, ये क्या बात हुई, ये क्या। अभी मुझे एक ईमेल आई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने बड़ा ही एतराज किया कि भाई जन्नत के अंदर दो औरतें मैंने सुना है कि दुनिया की मिलेंगी आदमी को, और 70 हूरें मिलेंगी, तो ये क्या बात हुई, ये कोई अल्लाह का इंसाफ है, ये कोई ये है, मैं तो समझती नहीं हूँ ये कोई इंसाफ, और अल्लाह को तो बड़ा इंसाफ वाला कहते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं इतनी परेशान हुई ये ईमेल पढ़ के। ये लोगों को सोचना चाहिए, पहले पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि पहले आप ये समझ बैठे हैं कि आप जन्नत में जा रहे हैं। ये तो बात की बात है ना कि आदमियों को क्या मिलता है, किसको क्या नहीं मिलता, और यानी इन हमारे दिमागों के अंदर ये शायद बैठा हुआ है कि वो जन्नती तो हम ही है ना, वो तो पहले तुम वहां पहुंचने की तो कोशिश कर लो, और किस पे एतराज कर रहे हो, कुछ सोचो तो सही। उसने कहा हम तो यहाँ पे अपने शौहरों को संभाल संभाल के रखते हैं कि वो कहीं और औरतों के साथ ना चले जाए, और वहां जाके हम शेयर करें इसको। लगता है कि औरतों का दिमाग में सिवाय शोहरों के और कोई इनको कंट्रोल करने के सिवा और कोई दिमाग में है ही नहीं चीज। जिस मंजिल की तरफ जो तुम्हारा मकसद हयात है वो तो कुछ और है, तुम इसी के चीज के पीछे पड़े हुए कि इनको कैसे मैंने बस अपने साथ ही बांध के रखूं और वहां पे भी जाके इसको कहीं और ना कोई मिल जाए। कह किस तरह की बातें करती हैं, इनकी अकल की इंतहा बस यहीं तक है औरतों की, बस आदमी मिले मुझे, बस ये इंतहा है। और एतराज इस पे है कि इसको ज्यादा क्यों मिल गई, औरतों को तो दो की इजाजत नहीं है, मर्दों को कैसे दो की इजाजत होगी, चार की इजाजत होगी। औरत को आदमी एक तरह से अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है, क्या औरत चाहती है कि वो 10 आदमियों से इस्तेमाल हो। सीधा मुझे मेरा आप लोगों से सवाल है, मुझे सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा, लेकिन उनको ये है कि नहीं हमें जन्नत में भी जाके इतने ही आदमी मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकल दे औरतों को भी। तो यहाँ से हमें पता चला कि उन आदमी को ये इजाजत दी गई कि वो दो तीन और चार निकाह करें, उस माशरे के कॉन्टेक्स्ट में पहले रख के देखते हैं और फिर आज के भी कॉन्टेक्स्ट में रख के देखेंगे। उस माशरे के अंदर जहां पे ये आयात उतर रही है ना, वहां पे एक आदमी की 10-10 बीवियां, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यानी जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक्त फरमाया था, एक सहाबी है उनकी 10 बीवियां थी, तो उनसे फरमाया कि आप इनके अंदर से कोई चार रख सकते हैं, बाकी को आपको तलाक देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अब इसकी लिमिट आ गई भी है। एक की 9 बीवियां थी, उनको भी यही कहा गया, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं थी। इस्लाम ने कहा नहीं, देयर हैज टू बी अ लिमिट, आप चार से ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते। अब आज के माहौल के मुताबिक, आज तो आपको लगता है कि एक है, तो अब इनको शायद कह दिया गया कि आप चार ही करो। हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो चार करे, जरूरी नहीं है कि चार करे, मगर अल्लाह ने इजाजत दे दी। इजाजत क्यों दी भाई, क्यों ये हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई और ये हो गया। हालांकि अगर आप देखें इसमें इतनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की। पहले तो आपको पता है हमारे लोग आजकल शादियां करने से ही कतरा रहे हैं, निकाह करने से ही, शादी करना ही नहीं चाहते। एक जगह मैंने पढ़ा, किसी ने लिखा हुआ था कि जब दूध बाजार में मिलता हो तो गाय लाके घर में बांधने की जरूरत क्या है। आप समझे बात को, यानी हर चीज तो अवेलेबल है तो फिर क्या जरूरत है शादी करने की। लिविंग टुगेदर किसी के साथ भी करो और बस छोड़ दो। हमारा दीन इस चीज को हराम करता है। और हमारा दीन क्या कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स घर बसाने की ताकत रखता है वो निकाह करे। क्यों? इसलिए कि निकाह नजर को ज्यादा नीचे रखता है, शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करता है। और तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे शहवत को कम करते हैं, इंसान की जो ऐसी ख्वाहिशात है उनको कम करते हैं। और ये निकाह करना अंबिया की सुन्नत है, ये सोचना चाहिए। आदमी के लिए कहा गया कि दुनिया की बेहतरीन मता जो है वो नेक औरत है। और ये भी एक हदीस में आता है इब्ने माजा की है कि अल्लाह के खौफ के बाद मोमिन के फायदे की सबसे अच्छी चीज उसकी नेक बीवी है। यानी इंसान के लिए कितनी बड़ी एक ही इस ये कितना बड़ा इसको फायदे की बात बताया गया। और वो कहते हैं कि हमें शादी क्यों करें, हम औरतें बैठी नहीं है, आदमी शादी नहीं करना चाहते। तो ये तो इसको तो इतनी बड़ी बात कहा गया कि ये तो इतना बड़ा नफा है जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है। फिर आप ये सोचें कि इंसान को बीवी के जरिए सकून हासिल होता है। अल्लाह ताला ने ये रिश्ता सकून का बनाया, इससे अल्लाह ताला जो औलाद अता फरमाता है वो औलाद इंसान के लिए कितनी बड़ी खैर का बायस है। उसकी तरबियत, उसकी जो परवरिश है, उसके ऊपर अजर मिल रहा है। उस औलाद को इंसान जो उसकी किफालत करता है, उसके ऊपर जो मेहनत करता है, उसका सिला पाता है। अल्लाह ताला उस कमाई को भी जो कमाई कर रहा है, सिर्फ इस औलाद को और इस घरवाली की यानी इनकी जरूरियात पूरी करने के लिए, उस कमाई को भी इबादत कहा गया। अगर वो हलाल की है तो वो भी इबादत कर रहा है, वो इबादत में है जब तक वो कस्बे हलाल कमाता है। निकाह के जरिए फिर जो औलाद होती है वो इंसान को, इंसान के लिए दुआएं करती है, उसके लिए सदका जारिया बनती है, इस उम्मत में एक इजाफे का बायस बनती है। और शादीशुदा इंसान माशरे में अकेला नहीं होता, उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है। फिर जब वो इन औलाद की शादियां करता है, उसे नई रिश्तेदारियां पैदा होती हैं। अगर उसकी औलाद फौत हो जाए कम उम्री में, तो वो औलाद वालदैन की शिफात करेगी कयामत के दिन। और फिर वो औलाद जो नेकियां करती रहे, उसका अजर माँ बाप को मिलता रहता है। बाज औकात औलाद की नेकियों की वजह से वालदैन की मगफिरत हो जाती है। तो कितने निकाह के फवायद हैं। फिर सबसे बड़ा देखेंगे फायदा कि इंसान की शहवत का जोर टूटता है, वो शैतान की शर से महफूज हो जाता है, उसकी नजर पाकीजा हो जाती है, बदकारी से बच जाता है। वो बीवी आदमी बीवी बच्चों की जब जिम्मेदारियां उठाता है, उनके फराइज पूरे करता है, तो उसके ऊपर भी अजर पाता है। यहां तक कहा गया एक हदीस में है कि वो बेहतरीन सदका है, जो इंसान अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालता है ना, तो वो भी एक सदका है, वो बेहतरीन सदका कहा गया उसको। इसी तरह अगर बेटियां हैं उसकी, तो उनके ऊपर जो खर्च करेगा, बेटियों के भी बारे में आया और बहनों के भी बारे में आया कि जो उनके ऊपर वो खर्च करता है, तो हत्ता कि अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर दे, तो उसके लिए वो दोजख से हिजाब हो जाएंगी। जो इंसान अपनी दो बेटियों या दो बहनों पे खर्च करता है, हत्ता कि वो उनकी शादी हो गई कहीं, या वो मतलब जो ऑन देयर ओन हो गई, तो वो उसके लिए दोजख से हिजाब हो जाएंगी। तीन बच्चे अगर किसी के फौत हो जाते हैं और उसके ऊपर वो सब्र करता है, तो और दो बच्चों के बारे में भी हदीस में आया, क्योंकि एक आदमी ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, तीन के बारे में पूछा और दो के बारे में भी पूछा। सब्र करें अगर वो औरत, तो दोजख से हिजाब बन जाएंगे वो बच्चे उसके लिए। तो यानी निकाह के बहुत सारे फवायद हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत को देख के खुश होंगे। तो निकाह होगा तो औलाद होगी ना, उसके जरिए फिर इंसान ये कह सकते हैं, ये मेरे नबी इस बात से खुश होंगे। और आज के जमाने में जहां पे इतनी बाहर बेहयाई है, अपनी इज्जत को महफूज रखना सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब इंसान निकाह करे, वरना वो कोई बुराई के अंदर पड़ सकता है। इससे देखें, जब आदमी निकाह करता है तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं, उस सोचें कि वो कितनी बड़ी खैर कर रहा है कि वो एक औरत की इज्जत को भी महफूज कर रहा है, उसको एक छत दे रहा है। क्योंकि औरत जब तक बाप के घर में होती है बाप का साया होता है, लेकिन उसके बाद बाप हमेशा तो साथ नहीं रहता ना। औरत को चाहिए होता है कि उसके ऊपर शोहर का साया हो ताकि लोग उसकी तरफ मैली नजर से ना देखें। तो आप देखें कि एक औरत को भी उसने तहफ्फुज़ दिया है, प्रोटेक्शन दी है। फिर औरत आदमी से अपनी हाजत पूरी करते हैं, लज्जत उठाते हैं, और वो जो लज्जत उठा रहे हैं, वो जो अपना ताल्लुक आपस में कायम करते हैं, उसके ऊपर भी उनकी नेकी लिखी जाती है। और इसी तरह ये भी है कि देखें, बहुत सी इबादात जो जो दरवेश लोग नहीं कर सकते, जो दुनिया को छोड़ के एक तरफ हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते, वो ये बंदा कर सकता है। जी, यानी बहुत से सवाब के काम जो शादीशुदा है। और जब इंसान ये जो उसके शहवानी जो ख्यालात हैं इनसे निकलता है ना, तो तभी वो कोई पॉजिटिव काम कर सकता है, वरना उसके दिमाग के ऊपर सारा वक्त यही सवार रहता है, मुफीद काम वरना वो नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। जिन तीन लोगों की अल्लाह ने मदद का अपने जिम्मे करार दिया है, उनमें से एक वो भी है जो अपने आप को पाकीजा रखने की खातिर निकाह करता है, एक वो भी है। ये अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मेरे जिम्मे है इनकी मदद करना जो पाकीजगी की खातिर निकाह करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि निकाह की फजीलत कितनी है, निकाह की अहमियत कितनी है, इसका फायदा कितना है। क्योंकि आज के वक्त में एक निकाह भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते जाओ और उसी के ऊपर इतनी इतनी बड़ी उम्रों के हो जाते हैं और फिर भी नहीं शादियां करते, मानते ही नहीं शादी करने पे। तो ये फवायद पता होने चाहिए। फिर अब जहां तक ये आता है कि एक से ज्यादा बीवियों का क्या फायदा, या क्या उनका उनकी क्यों क्या वजूहात, उस जमाने का तो समझ आ गई, आज तो आज क्या फायदा हो सकता है इस चीज का। तो देखें, एक तो बात ये है कि आज के दौर के अंदर औरतों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हर जगह पे आप देखें मर्द कम है और औरतें ज्यादा हैं, हर जगह में, हर मुल्क में आप देखें, कहीं डबल है कहीं 4 टाइम्स है। ठीक है, अब इस चीज को एक तरफ रख दें इस वक्त कि मेरा शोहर ना कहीं जाके शादी कर ले, बात यह है कि देखें ये एक नेचुरल नेचुरल इंसान के अंदर वो होती है, किसी औरत के अंदर भी है। उम्महातुल मोमिनीन में भी आपस के अंदर एक दूसरे के लिए ऐसे नहीं था कि बिल्कुल कोई कोई ऐसे ही बिल्कुल बहुत ही शीरो शक्कर ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल वो, उनके अंदर भी कोई ना कोई आपस में एक दूसरे के लिए हो जाती थी बात। तो ये रिश्ता ही ऐसा है, ये बात ही ऐसी है कि कोई औरत इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मगर आप एक इससे निकल के बाहर और अपने दिमाग में से ये निकाल के कि मेरा शोहर ना कहीं कर ले, इस चीज को अल्लाह का जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक कानून दिया है कि 4 से ऊपर नहीं करनी, और जो इजाजत मर्द को मिल गई है 4 तक करने की, उसके पीछे की जरा फवायद और हिकमतों को जरूर जान लें। क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ औरतों का रब नहीं है, वो मर्दों का भी है। उसको पता है आदमी को उसने पैदा किया है, उसको पता है इसकी जरूरत क्या है। एक तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मर्द को बीवी की, पहली बीवी की इजाजत की जरूरत है दूसरी शादी करने के लिए, हालांकि उसको नहीं है। जब अल्लाह ने इजाजत दे दिया तो उसको अब बीवी की इजाजत की क्या जरूरत है, अल्लाह ने उसको इजाजत दी भी। ठीक है, तो अब जहां पर औरतों की शरह पैदाइश लड़कियों की मर्दों से ज्यादा है, वहां पे अगर एक आदमी एक ही शादी करता है तो आप देखें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। कि जो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बगैर शादी के रहेंगी, इसका मतलब है, और बहुत सारी ऐसी भी औरतें हैं जो बगैर शादी के रहने की वजह से नाजायज कोई
दोस्तियां, नाजायज तरीके अपनी ख्वाहिश पूरी करने के इस्तेमाल करेंगी। तो ये दोनों ही सूरतें सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिलउमूम मर्द के अंदर जो जिंसी ताकत है वो एक तो ज्यादा लंबे अरसे तक कायम रहती है, औरत की मेनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट खत्म होके रह जाती है जबकि वो 40-50 साल की होती है, और मर्द अभी मसलन उससे जितना भी बड़ा है, 5-6 साल बड़ा है, उसके अंदर अभी वो ताकत होती है। अब अगर एक आदमी का सिर्फ एक ही निकाह हो तो वो अपनी जो बाकी जिंदगी है जिसमें औरत की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है उसके अंदर या तो वो बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिश पूरी ना करे, या फिर वो कोई नाजायज तरीके इस्तेमाल करे, या नाजायज जगहों पे जाए, हराम जगहों पे जाए और वहां पे जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करे। दोनों ही गलत है। इसी तरह बाज दफा औरत बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती और आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चा उसका हो, औलाद हो। अब अगर ये कह दिया जाए सिर्फ एक ही कर सकते हैं तो या तो वो इस एक को तलाक दे फिर दूसरी करे, या इसको भी रख ले और दूसरा निकाह कर ले, क्या ज्यादा बेहतर लगता है। एक और बात होती है, बाज दफा आदमी की बीवी बीमार हो जाती है, उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो शौहर सेहतमंद है, ये बीमार है, वो अपने शौहर की नहीं जरूरत पूरी कर सकती। अब भी अगर एक की ही इजाजत हो तो या तो वो औरत को तलाक दे फिर दूसरी लाए, या इसको रख के ले आए, या फिर वो कहीं और जाके हराम जरिए पे पूरी करे। जाहिर है कोई भी और जरिया जो अपनी बीवी के अलावा है वो हराम ही है, कोई भी और तरीका या कोई भी और जगह वो हराम है सिवाय अपनी बीवी के, तो वो जो भी करेगा वो हराम ही होगा। और एक ये भी हो सकता है, मर्द है, हो सकता है अपनी बीवी है लेकिन उसको कोई और ऐसी पसंद आ जाती है कोई औरत कि वो उसकी तरफ मायल हो जाता है और वो चाहता है कि वहां पे वो शादी कर ले, लेकिन अगर एक ही शादी की इजाजत हो तो सिर्फ पहले या तो इसको तलाक दे तो फिर दूसरी करे, या फिर दोनों को रख ले। इसी तरह आप ये देखें कि एक अगर बीवी हो तो बाज़ दफा आदमी के जो शहवत की होती है बहुत ज्यादा होती है कुव्वत उसके अंदर, और औरत को माहवारी पीरियड्स हैं या फिर बच्चे के बाद निफास के दिन हैं उसके, जिसकी वजह से आदमी अपने आप पे काबू नहीं पा सकता और वो कहीं और जाके कुछ गलत काम करता है तो ये फिर हराम हो जाता है। अगर उसके पास 4 बीवियां होंगी तो कोई ना कोई ज़रूर होगी जो कि उसके लिए हमेशा यानी जो उसके लिए अवेलेबल होगी। तो यानी आप एक बहुत नीचे जाके कोई चीज को ना देखें कि बस मैं अपनी बात करूं, आप इसको एक ब्रॉडर सेंस में देखेंगे क्या हिकमत है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव बात तब आती है जब आपको लगता है हाय हमारे साथ ज्यादती हो गई, हाय हमारे लिए क्यों, हाय मर्दों को क्यों ये इजाजत मिली, और आप उसके पीछे जो हिकमतें हैं उनको नहीं समझते। और आज के दौर में जिस कदर ज्यादा बेहयाई, फहाशी और इस किस्म की चीजें जो कि इंसान के सेक्सुअल जज्बात को उभारती हैं वो इतनी ज्यादा हैं, चाहे वो इंटरनेट देख लें, चाहे वो बिलबोर्ड देख लें, चाहे वो फिल्में देख लें, चाहे उरियानी नंगापन जितना बाहिर है वो देख लें, ऐसे ऐसी बातें, ऐसी खबरें, ऐसे टूल्स, ऐसी सब चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं कि कोई भी आदमी बहुत आसानी से किसी भी बुराई के अंदर पड़ सकता है, हराम रास्ते पर जा सकता है। ऐसे में अगर उसकी बीवी ही नखरे करने वाली हो, या वो कभी उसके लिए अवेलेबल ही ना हो, या वो उसके पीरियड ही खत्म ना होते हो, उसको ऐसी बीमारी हो कि वो बस अपने आप को समझती है कि बस मैं इसी के अंदर हूँ, या फिर वो निफास में हर साल हुए उसके उसको इतने दिन लग जाते हैं, या कोई भी और वजह हो सकती है, या उसका दिल ही मायल नहीं होता, तो फिर आप खुद बताइए कि एक आदमी के जिना में पड़ने के कितने चांसेस हैं। आंखों के जिना, कानों के जिना, और शर्मगाह तो जिना ही करती है, कितने ज्यादा उसके लिए चांसेस हैं, और जब अवेलेबिलिटी भी है तब वो किस तरफ जा सकता है। आज बाज औरतों का यह ख्याल है कि मेरा शोहर जाके बाहर किसी के साथ भी कुछ भी कर ले, शादी ना करे बस, तो यानी हराम कर ले, शादी ना करे। तो अल्लाह ने आपकी देख के कोई अहकामात कवानीन नहीं नाजिल करने, अल्लाह ताला के कवानीन सबकी भलाई और पूरे माशरे को देख के कि जिसमें उनकी खैर ख्वाही और भलाई है उसके मुताबिक है। एक औरत के नहीं कि मेरा दिल नहीं चाहता है बस मेरा मियाँ मेरा ही रहे, मेरा शौहर कहीं और ना देखे। तो अगर एक आदमी की चार बीवियां हों तो वो, या एक से ज्यादा बीवियां हों, तो फिर ज्यादा ये चांस है कि वो इस इन बुराइयों में नहीं पड़ेगा। मगर इसकी एक शर्त रख दी गई, फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू, अगर तुम्हें ये डर हो ना कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन औ मा मलकत अईमानकुम, तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है, या तुम्हारी जो मिलके यमीन है यानी तुम्हारी जो दाएं हाथ के जिनके तुम मालिक हो, तुम्हारे दाएं हाथ जिसके मालिक हैं यानी लौंडियां। आज लौंडियां मौजूद नहीं है, इनके साथ भी ताल्लुक कायम किया जा सकता था, जो जंगी कैदी हो के और फिर आती थी और मर्दों में तकसीम हो जाती थी, जो जिसकी मिल्कियत में जो होती थी वो उसके ऐसे ही उसके लिए होती थी कि जैसे अपनी बीवी हलाल है। अब इसका तो सवाल इसलिए इस वक्त हम इस पर नहीं डिस्कशन करेंगे कि जब है ही नहीं तो फिर क्या, इस वक्त कोई नौकरानियां जो हैं उनको बाज लोगों ने समझ लिया वो लौंडियां, वो लौंडियां नहीं, वो आपकी जरखरीद नहीं है, ना ही वो कोई जंगों में से मिली है, इसलिए इनका सवाल आज है ही नहीं, पूरी दुनिया में ये नहीं है। तो जब है ही नहीं तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन करके इस वक्त क्या आपको मिलेगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम अदल नहीं कर सके तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि इस्लाम हमें ये बताता है कि असल चीजें ये नहीं है कि शादियों पे शादियां करते जाओ और शादियों से बड़े खुश हो रहे हैं और बस शादी बड़ा मजा आएगा, असल बात यह है कि हकूक एक दूसरे के अदा करने हैं। अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम दूसरे का हक अदा कर सको तो फिर तुम मत करो ये, फला तमीलुल कुल्लल मैली फतदरुहा कल मुअल्लका। अल्लाह ताला ने इसी सूरत में आगे जाके फरमाया, एक की तरफ ही ऐसे मायल ना हो जाना कि फिर दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। अक्सर आपने देखा होगा हमारे माशरों में जहां पे किसी आदमी ने, कभी आपने सुना हो कि किसने दूसरी शादी कर ली, तो बिजली का हाल क्या होता फिर, वो कहती है मुझे तलाक ना दो, मुझे बस रखे छोड़ो। तो वो उसको रख तो लेता है लेकिन उसके बाद उसके साथ सलूक क्या होता है और उसके बच्चों के साथ क्या सलूक होता है, मैंने अब जो औलाद उससे थी उनको तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उस औरत का कोई हक उसको नहीं दिया जाता। यहां तक कि देखा गया है कि जायदादों तक में उनको कोई भी नान नफका तक नहीं देना, और वो रुलती फिरती रहती हैं और अपने वालदैन पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो बीवियों में अदल जरूरी है, कि अदल में क्या चीज है, अदल में ये नहीं है कि एक जितनी मोहब्बत सबसे हो, देखिए एक जितनी मोहब्बत बाज दफा इंसान को अपनी औलाद में भी सबसे नहीं होती, कोई बच्चा ज्यादा प्यारा होता है कोई कम होता है, तो बीवियों में एक जितनी कैसे हो सकती है। बल्कि यहाँ पे अदल से मुराद क्या है कि एक जो वक्त है ना एक जितना सबको मिलना चाहिए, अगर एक रात इसके साथ रहता तो एक रात ही दूसरी के साथ भी रहे, इसी तरह ना नफका, इसी तरह जो भी और मादी चीजें हैं उनके अंदर इंसाफ होना चाहिए, बराबरी बिल्कुल, जितना इसका उतना ही उसका। अब ये बहुत ही कम हो गया है कि एक से ज्यादा कोई भी शादियां करता है, ज्यादातर हमारे माशरों के अंदर तो एक पे ही मर्द इक्तफा करते हैं, क्योंकि खर्चे और ये सब चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि आज एक घर को ही एक आदमी उठा ले तो वो ही बहुत बड़ी बात है, और एक से ज्यादा की क्या हो सकती है। तो इसलिए ये भी आज औरतें शिकायत तो बहुत करती हैं लेकिन शायद ही कोई औरत हो जिसके शौहर ने दूसरी शादी की हो और वो भी साथ रहती हो। तो अदल के तकाजों को पूरा करने की आदमी को देखनी चाहिए कि मेरे पास इतना मैं इतना कर सकूंगा कि इनमें इंसाफ हो, क्योंकि जिसकी दो बीवियां हदीस में आता है और वो उनमें अगर अदल ना करे तो कयामत के दिन वो आधे धड़ के साथ उठाया जाएगा। तो अदल भी मुश्किल चीज है, ये आसान चीज नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अदल फरमाते थे, अल्लाह के आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी
यानी उस वक्त मरजुल मौत तक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इजाजत ली कि अगर आप इजाजत देती हो तो फिर मैं इनके घर के अंदर रह लूं। बीमारी में भी एक एक घर में जाते थे, बीमारी में भी। लेकिन जब बिल्कुल ही हालत ऐसी हो गई कि डिपेंडेंट हो गए कि किसी के सहारों को लेके फिर चलते थे, तो उस वक्त आपने इजाजत ली उनसे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस चीज की खुली इजाजत दी हुई थी कि जिसके पास जाएं जिसके पास नहीं जाएं, वो नहीं आपके ऊपर पाबंदी थी। और जिन लोगों के ऊपर पाबंदी है कि उनको अदल ही करना है, वो देखें कि आज कितना अदल हो रहा है। ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا, ये ज्यादा करीब है इसके कि तुम अदल करो, यानी ये बात ज्यादा करीब है इसके कि तुम एक तरफ झुक जाओगे। यानी अगर तुमने अदल ना किया तो तुम एक तरफ ही मायल हो जाओगे, फिर एक के साथ ही एक को घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, ले जा रहे हैं, सैरें हो रही हैं, ये हो रहा है, दूसरे बेचारे देख रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और दूसरा भी इसका माना है अल्लाह ताउलू, तुम अयालदार ना हो जाओ, यानी ज्यादा बहुत ज्यादा अयालदार, बहुत ज्यादा बड़े बड़े खानदान हो जाएं कि फिर संभाले ही ना जाए, तो फिर तुम्हारे लिए एक ही सही है। जैसे आज के वक्त के अंदर है कि बहुत सारे ऐसे हालात हो चुके हैं कि एक की जरूरतें पूरी करने आदमियों के लिए मसला होता जा रहा है।